द उला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् जय उधरसेननाहो जैन महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्यो फुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें द्वितीय खंड खुद्दाबंध नाम का है और इस सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 117 पर हम आ गए, 117। कल हमने नारकियों की आयु की बात देखी थी कि जघन्य से 10,000 वर्ष होती है और अधिक से अधिक 33 सागर तक होती है। उसमें भी पहले नरक में जो 13 पटल है, उसमें पहले पटल की आयु हमने देखी जघन्य से 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 90, पहले पटल 90,000। दूसरे पटल की उत्कृष्ट 90 लाख, तीसरे पटल की उत्कृष्ट गिनेंगे, क्योंकि जघन्य एक समय अधिक होती है ना, पहले के जघन्य से दूसरे की, पहले के उत्कृष्ट से दूसरे के जघन्य एक समय अधिक है। पहले में हम जघन्य उत्कृष्ट कहेंगे, आगे आगे के उत्कृष्ट उत्कृष्ट कहेंगे, इसलिए पहले का जघन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट है 90,000, फिर दूसरे का उत्कृष्ट है 90 लाख, तीसरे का उत्कृष्ट है असंख्यात पूर्व कोटि, और चौथे के सागर का 10वां भाग यानी 1 दशांश सागर, फिर आगे के प्रति पटल 1 दशांश 1 दशांश बढ़ता है, बढ़ते हैं तो 2 दशांश 3 दशांश 4 दशांश इस तरह हो जाते हैं, वो हमने कल देखा था।
एक दशांश सागर
यानी 1 दशांश सागर है चौथे पट पाथड़े की, उसमें 1 दशांश और बढ़ गया तो 2 दशांश हो गया उसमें और एक, हाँ इस तरह से एक एक में बढ़ते चले जाए, अंतिम में 1 सागर। अब आगे के पृथ्वियों की बात करेंगे। हाँ, क्रम संख्या ने उसका नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चौथे को एक पहला नंबर दिया, क्योंकि वहां से आगे क्रमिक वृद्धि है। पहले ऐसा कुछ रिलेशन नहीं था ना, 90,000 से 90 लाख हो गया तो उसमें कुछ संख्यात वर्ष की थी, तो उसमें कोई ऐसा क्रमिक वृद्धि नहीं थी, तो चौथे से हमने क्रम देना चालू किया। चौथे से 13वें तक क्रम से कहेंगे तो 10 होता है, तो उसमें 10 में से पहला फिक्स रखेंगे 1 दशांश, और आगे कितनी वृद्धि हुई, हाँ तो 9 दशांश टोटल वृद्धि हुई आगे आगे, तो आगे एक को छोड़कर आगे 9 रहे, उसमें हर एक में 1 दशांश 1 दशांश की वृद्धि हुई। समझ में आई बात? ये पाथड़े का नंबर 4 है, उसको एक नंबर क्रम दिया, वहां से क्रम से हमने गिने। अब हम 7 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। विद्याय जाव सत्तमाय पुढ़विये नेरैया केवचिरम कालादो होंती। वो पुढ़विये बराबर करना, उकार नहीं हुआ है। हाँ, दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक की पृथ्वियों में यानी नरकों में नारकी जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, यानी वहां की आयु बताना चाहते हैं। अब ये एक सागर था तो एक सागर और एक समय वाली वहां होगी। यह सूत्र सुगम, यानी प्रश्न जो है वो समझने में आवे ऐसा है। તો કે તે જહન્યન એક તીનની સત્ત દસ સત્તારસ બાવીસ સાગરો વમાણી સાદી રેયાની. જઘન્ય છે દૂસરી પૃથ્વી મેં કુછ અધિક એક સાગરોપમ, કુછ અધિક એને એક સમય અધિક, તીસરે મેં કુછ અધિક તીન, એને જો દૂસરી કે ઉત્કૃષ્ટ હૈ વો તીસરી કે લિયે કુછ અધિક તીન કહે દિયા. ચૌથી મેં કુછ અધિક સાત, એને સાત સાગર તીસરી કા ઉત્કૃષ્ટ આયુ હૈ, જો ચૌથી મેં એક સમય અધિક સાત હો ગયા. પાંચમી મેં કુછ અધિક દસ, છઠ્ઠવી મેં કુછ અધિક સત્ર, સાતમી મેં કુછ અધિક બાઈસ સાગરોપમ કાલ તક નારકી જીવ રહેતે હૈ. એને સાતવી પૃથ્વી મેં સાતવી નરક મેં હમ તેત્તીસ સાગર કહી દેતે, પરંતુ વહાં કી જઘન્ય આયુ બાઈસ હજાર બાઈસ સાગર હૈ. બાઈસ સાગર સે લેકર તેત્તીસ તક કે સભી ઉસમે ભેદ હો ગયે. એ બાઈસ સાગર ઉત્કૃષ્ટ કિસકી હૈ? છઠ્ઠે કી. હા, પૃષ્ઠ સંખ્યા 118 પર આ ગયે હમ. યહાં અભી દૂસરી સે લેકર આગે કી પૃથ્વીઓ મેં એને નરકો મેં વહાં કી આયુ કિતની હોતી વો બાત ચલ રહી હૈ. તો સાતવે સૂત્ર કા અર્થ હમને દેખા, ઓર આઠવા સૂત્ર પઢના રહી ગયા ના, ઉપર સે પઢી હમને ડાયરેક્ટ અર્થ દેખા ઉસકા. દેખો સૂત્ર ઉપર સા પઢે, જહન્ય ન એક પઢા થા, એક તીની પઢા થા, અભી યાદ આ ગઈ. તો જઘન્ય સે દૂસરી પૃથ્વી મેં, એને દૂસરી આદિ પૃથ્વીઓ મેં જઘન્ય આયુ કુછ અધિક એક સાગર, કુછ અધિક તીન સાગર, કુછ અધિક સાત સાગર, કુછ અધિક દસ સાગર, કુછ અધિક સત્ર સાગર, સાતવી મેં કુછ અધિક બાઈસ સાગર, કુછ અધિક મેં એક સમય અધિક ઇતના લઈ લેના ઉસમે. એ જઘન્ય જઘન્ય હૈ. સાતવે કી ઉત્કૃષ્ટ તો તેત્તીસ સાગર હૈ. અબ વો જઘન્ય બતાએ, અભી ઉત્કૃષ્ટ બતાએંગે. દૂસરી પૃથ્વી મેં એક સમય અધિક લિખા ના, કુછ અધિક મેં એક સમય અધિક એક સાગરોપમ. તીસરી પૃથ્વી મેં એક સમય અધિક તીન સાગરોપમ. ચૌથી પૃથ્વી મેં એક સમય અધિક સાત સાગરોપમ, કોમા લગા લો. પાંચમી પૃથ્વી મેં એક સમય અધિક દસ સાગરોપમ. છઠ્ઠવી પૃથ્વી મેં એક સમય અધિક સત્ર સાગરોપમ. ઓર સાતવી પૃથ્વી મેં એક સમય અધિક બાઈસ સાગરોપમ આયુ પ્રમાણ કાલ તક હૈ. હમ તો સાતવે નરક કી આયુ કિતની તો તેત્તીસ સાગર કહી દેતે, પણ વહાં કી વો ઉત્કૃષ્ટ આયુ હૈ. શંકા, સૂત્ર મેં સાતરીય અર્થાત કુછ અધિક શબ્દ આયા હૈ, ઉસે એકમાત્ર સમય હી અધિક હોતા યે કૈસે જાના જાતા હૈ? સાધિક મેં કુછ ભી હોતા હૈ ના, ઉસકે ડેઢ ગુણા હો જાય તો ભી ઉસકો સાધિક ગિનતે હૈ. સમાધાન, ક્યોંકિ ઉત્તરોત્તર ઉપરીમ પૃથ્વી કી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સમય અધિક હોકર નીચે નીચે કી પૃથ્વીઓ કી જઘન્ય સ્થિતિ હોતી હૈ. ઉપર કી પૃથ્વી ને પહેલી પૃથ્વી ઉપર હૈ, દૂસરી નીચે હૈ, તો ઉપરીમ પૃથ્વી કી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એને પહેલી પૃથ્વી કી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હૈ એક સાગર, ઉસમે એક સમય અધિક કરકે નીચે કે ને દૂસરી પૃથ્વીઓ કી જઘન્ય સ્થિતિ હોતી હૈ. દૂસરે પૃથ્વી કી મેક્સિમમ સ્થિતિ કિતની હૈ તો તીન સાગર. હા, તો તીન સાગર પ્લસ એક સમય. દેખો એક એક સમય કા ભી હિસાબ હૈ ના, અને એક એક સમય સે બઢતે હુએ વહાં કિતને વિકલ્પ હો ગયે. તો કૈસે જાના યે ઉન્હોને પૂછા થા, તો ઇસ આગમ વચન સે હી જાના જાતા હૈ કે ઉપરયુક્ત પૃથ્વીઓ કી જઘન્ય આયુ મેં સાતિરેક કા પ્રમાણ કેવલ એક સમય અધિક હૈ. ये समझ में आई ना बात? अब कहते उत्कृष्ट स्थिति बताएंगे हर एक पृथ्वी के. उक्कस्य न तिन्नी सत्त दस सत्तारस बावीस तेतीसम सागरो वमाणे द्वितीय आदि पृथ्वियों में आदि लगा ने दूसरे से सातवें तक की बात बताएंगे. नारकी जीव उत्कृष्ट से क्रमशः तीन सात दस सत्रह બાઈસ ઓર તેત્તીસ સાગરોપમ કાલ તક રહેતે હૈ. યહાં પર સૂત્ર કે અર્થ કરને મેં યથા સંખ્ય ન્યાય કા આશ્રય લેના ચાહીએ, અર્થાત તીન સાત આદિ સાગરોપમો કો ક્રમશઃ દૂસરી તીસરી આદિ પૃથ્વીઓ કે આયુ પ્રમાણ રૂપ સે ઉકાર નહીં આયા ઉસકા યોજિત કરના ચાહીએ, ક્યોંકિ દ્વિતીય આદિ ઓર ફિર ક્રમ બતાયા તો હમે વો ઉસી ક્રમ સે દૂસરે તીસરે ચોથે મેં જાનના ચાહીએ. पूर्वोक्त दोनों सूत्र देशामर्शक है, जो जघन्य है और ये जो उत्कृष्ट है देशामर्शक है, क्योंकि वे प्रत्येक पृथ्वी की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की प्ररूपणा द्वारा अपने अपने समस्त पाथड़ों की, पाथड़े ने वो पटल, आयु स्थिति की सूचना करते हैं। अब हम यहाँ इन दोनों सूत्रों के द्वारा सूचित अर्थ का प्ररूपण करते हैं, वे इस प्रकार है। अभी पहले पृथ्वी में हमने देखा था 13 पटल थे, अब दूसरे में 11 है, दो दो का डिफरेंस है। उसके नाम यहाँ इंद्रकों के नाम बता रहे, हर एक वो जो पटल है उसका सेंटर का जो बिल है उसको नाम है इंद्रक बिल, उसको नाम लेकर बता रहे। ये ऊपर से नीचे की ओर गिनना उसको, तनक स्तनक वनक मनक घात संघात जिह्व जिह्वक लोल लोलुप और स्तन लोलुप, ये क्रमशः द्वितीय पृथ्वी के 11 इंद्रकों के नाम हैं। इनकी आयु स्थिति लाने के लिए प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति को मुख करके, अभी वो एक समय वाली है ना, तो वहां तो अभी पूर्व पृथ्वी को मुख करना है और बढ़ोतरी तो यहां से डायरेक्ट हो जाएगी। पहले जब हमने किया तो चौथे को किया था, तो चौथे को गिनकर बाकी में वृद्धि हुई थी। अब पहले को नीचे छोड़ो तो दूसरे के जितने पटल है उतनी बार वृद्धि होगी। फिर से पहले जब हम चौथे पटल से 13वें पटल में देखा था, तो चौथा पटल हमारा बेस था और उसके बाद 9 पटल रहे थे, तो 9 पटलों में 9 दशांश वृद्धि हुई थी। अब हमारे पास क्या है, पूर्व पृथ्वी की बात की, पहली पृथ्वी के उत्कृष्ट एक सागर है, दूसरी पृथ्वी में 11 पटल है और दूसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट कितनी होती है, 3 सागर, तो कितने बढ़े, 2 सागर बढ़े, 2 सागर कितनी बार, 11 हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कि इनकी आयु स्थिति लाने के लिए प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति को मुख करके, वो मुख भूमि देखे थे ना हमने, जो अल्प वाली बात है उसको मुख कहते हैं, तथा दूसरी पृथ्वी की 3 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु को भूमि करके, ये गणित के टर्मिनोलॉजी है, और 11 इंद्रकों को उच्छेद करके, उच्छेद का एक्चुअली उसके अर्थ होता है हाइट, परंतु उच्छेद यानी हमें 11 पटलों में वो क्रम से वृद्धि रूप हो रहा है, उसको उच्छेद नाम है। यहाँ पूर्वोक्त करण गाथानुसार द्वितीय पृथ्वी के 11 पाथड़ों में से प्रत्येक का आयु प्रमाण मुख में ले आना चाहिए। देखो हमने गाथा पढ़ी थी कल, निकालो 117 पृष्ठ पर। अभी गाथा को ही लिखो ऊपर, मुह भूमिन विशेषो, मुख और भूमि के जो विशेष यानी डिफरेंस है, अभी हमारा एक सागर और 3 सागर में डिफरेंस है 2 का, 2 सागर का। उच्छय भजी दो, उच्छेद हमारा है 11, उससे भाग देना। दुजो हवे वड्डी, वो वृद्धि का प्रमाण है, यानी हाँ 2 को हमने 11 से भाग दिया, यानी 2 11 अंश वृद्धि होगी। देखो देखो पहले में क्या था, 9 थे ना, बाकी 9 थे और 9 में 9 दशांश टोटल वृद्धि हुई थी। हाँ तो 9 दशांश को हमने 9 से भाग दिया तो 1 दशांश वृद्धि प्रति प्रति पटल 1 दशांश की वृद्धि। अब यहाँ हमारे 2 सागर बढ़ने वाले हैं, कितने पटलों में, 11 पटलों में, तो प्रति में यानी 2 ग्यारह अंश की वृद्धि होगी। 3 सागर नहीं है, 3 सागर नहीं है, 3 पहले, 1 सागर तो पहली पृथ्वी की है, अभी पहली से एक्स्ट्रा कितनी है, तो 2 सागर, खाली 2 सागर नहीं है, 1 सागर प्लस 1 समय से लेकर बढ़ते हुए, देखो बढ़ते हुए उसमें 11 पटल है पहली में, देखो ये पहली नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, अभी यहाँ पटल है 11, 1, 2, 3, 4 ऐसे 11 पटल है, तो यहाँ जाके वो 3 सागर होने वाली, 11वें पटल में 3 सागर, तो कितने 11 में 2 सागर बढ़े ना, बढ़ोतरी कितनी हुई 2 सागर की, डिफरेंस कितना है 2 सागर का, 2 सागर कितने में बढ़े तो 11 में बढ़े, 11 में 2 सागर बढ़े ना, तो प्रतिपटल 2/11 की वृद्धि हुई, वहां 1 की हुई थी, यहाँ 2/11 की हो रही है, तो इंटू 11 करने से 2 हो जाते हैं ना।
नहीं, उनका कहना है कि दूसरे पृथ्वी के 2 सागर ही होना चाहिए, क्योंकि आप 2 बढ़ाते हैं।
नहीं नहीं नहीं, सर्वत्र 2 सागर नहीं है,
एक
वो मैक्सिमम 2 सागर बढ़ गए लास्ट पथड़े में। जैसे यहाँ उन्होंने सूत्र बताया था ना, देखो क्या कहना, मोह भूमि ने विशेष उच्च भिज दो जो हवे वड्डी, हमें वृद्धि का प्रमाण आया, वड्डी इच्छित गुणा, अभी मान लेते कि वहाँ डायरेक्ट 5वें पटल में कितनी होगी, तो 2/11 गुणा 5 10/11 हो जाएगी, अंतिम पटल में 2/11 गुणा 11 2 सागर हो जाती है, डायरेक्ट वहाँ की आयु मिल जाती है हमको। ये सूत्र अभी हमने पढ़ा था पहले, उसका यहाँ हमने एप्लीकेशन किया, ये उदाहरण यहाँ दे रहे, देखो पेज नंबर 119 उदाहरण, द्वितीय पृथ्वी संबंधी मुख 1 सागर, क्योंकि नीचे के पृथ्वी के उसको यहाँ मुख कहेंगे, भूमि 3 सागर, उच्छेद 11, क्योंकि 11 पटलों में इतनी वृद्धि होगी, अतएव प्रत्येक प्रस्तर के लिए वृद्धि का प्रमाण हुआ, 3-1 किया ना पहले, डिफरेंस निकालना था और उसको उच्छेद से भाग दिया, तो 2/11 आ गए, इसको इच्छा अर्थात प्रस्तर की क्रम संख्या से गुणा करने पर, डायरेक्ट हमें छठे क्रम से छठे से गुणा करेंगे तो 12/11 आ जाएगा, कहीं पर जो प्रस्तर का जो क्रमांक है, इसलिए वहां पर भी क्रमांक दिया था चौथे से लेकर, हमें डायरेक्ट उसका मिल जाता है उत्तर, गुणा करने पर व मिलाने पर, वो केवल 2/11 नहीं है, वो पहले 1 में मिलाना वो भी जरूरी है, क्योंकि बेसिक 1 था ना, उसमें वृद्धि होकर वहां जैसे 5वें की 5 × 2/11 10/11 हुए, तो 1 मिलाना 1.10/11 हो जाएगी, क्योंकि वो बेस है ना, वृद्धि का प्रमाण मिला हमको, हाँ एक्स्ट्रा कितना है वो मिला हमको, उसको मुख तो रखना है, मुख में वो उतना मिलाना, यहाँ लिखा ना गुणा करने पर वो मिलाने पर 11 प्रसरों का आयु प्रमाण इस प्रकार आता है, क्योंकि हमने लास्ट पथड़े में 11वां पटल में 2/11 × 11 2 सागर आए, पर वो वृद्धि का प्रमाण है, उसमें 1 में मिलाना पड़ेगा, तब जाके 3 सागर आयु मिल जाएगी। तो ये प्रस्तर के क्रमांक 11, यहाँ तो देखो पहली पृथ्वी में चौथे को 1 नंबर देना पड़ा, आगे के सभी पृथ्वियों में जितने पाथड़े यानी पटल है प्रस्तर है उतने ही क्रमांक हो गए। अब तीसरी पृथ्वी का कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुख क्या कहेंगे, बहुत अच्छा 3, अभी थोड़ा समझ में, अच्छा क्यों नहीं समझेगा, समझेगा, ये सब आसान है, हाँ और भूमि 7 डिफरेंस हुआ, 4 डिफरेंस 4 हुआ, वहाँ पटल कितने हैं, 9 पटल है, 4 नवमांश उसकी वृद्धि प्रति पटल, जितने नंबर का पटल है चौथे नंबर का है, 4 नवमांश गुना 4 इस तरह से हो जाएगा, +3 हाँ, ख्याल में आई बात, देखो यहाँ जो टेबल बताए ना, प्रस्तर यानी पाथड़े पटल, वो क्रम से 11 लिखे, आप प्रश्न करते आयु प्रमाण सागरों में, आयु प्रमाण सागर, आप प्रश्न आयु प्रमाण सागर, यह आयु का प्रमाण, पर उसका यूनिट क्या है तो सागर, तो देखो एक पूर्णांक दो ग्यारहांश, एक पूर्णांक चार ग्यारहांश है, एक पूर्णांक रखा उसमें। अब तीसरी पृथ्वी के पटलों के, वो पटलों के नहीं इंद्रकों के नाम बताएंगे। तीसरी पृथ्वी में तप्त, त्रसित, तपन, तापन, निदाघ, प्रज्वलित, उज्ज्वलित, सुप्रज्वलित और संप्रज्वलित नामक नौ इंद्रक हैं। इनकी आयु भी पूर्वोक्त विधि से जानकर ले आना चाहिए। उनकी संदृष्टि डायरेक्ट उन्होंने बताया, पर हमने गणित किया था, सात माइनस तीन किए थे, चार डिफरेंस आया और यहाँ नौ पटल है, तो प्रतिपटल वृद्धि यहाँ पर चार नमोमोश होती है और उसके बेसिक तीन है जिसको हम बेस कहेंगे, उसमें तीन पूर्णांक चार नमोमोश। तो ऊपर प्रसरों की संख्या लिखी एक से नौ तक, आयु प्रमाण सागर आप्रसायण है, तीन पूर्णांक चार नमोमोश, तीन पूर्णांक आठ नमोमोश, इस तरह से वो अंतिम में सात सागर हो जाती है। चौथी पृथ्वी में अब यहाँ सात इंद्रक है, आर, तार, मार, वांत, तम और खात, खात खात नामक। सात इंद्रक हैं, इनका आयु प्रमाण भी पहले के समान ले आना चाहिए। उनकी संदृष्टि इस प्रकार है। अब वहां तो तीन सागर, सात सागर था तीसरे में, चौथे नरक की उत्कृष्ट आयु दस सागर है, डिफरेंस है तीन सागर का और वहां पटल है सात, तो तीन सप्तमांश की वृद्धि हुई और वो सात में मिलाना चाहिए। तो प्रस्तर के क्रम से सात लिखेंगे और आयु प्रमाण सागरों में, तो सात अपना बेस है, उसको लेकर आगे की वृद्धि लिखना है। सात पूर्णांक तीन सप्तमांश, सात पूर्णांक छह सप्तमांश, ऐसे करते करते सातवें पटल में हाँ तीन सप्तमांश गुणा कहाँ पर, कहाँ पर हाँ, तो तीन सप्तमांश प्लस तीन सप्तमांश कितना होता है, छह डबल नहीं करना, छह सप्तमांश उसमें और तीन सप्तमांश और मिला दो, नौ सप्तमांश होता है, नौ सप्तमांश यानी दो सप्तमांश वहां रहेंगे और एक वो फुल हो जाएगा, सात सप्तमांश एक उसका एक वैल्यू होती है, वो सात में मिला है तो आठ पूर्णांक दो सप्तमांश हो जाते हैं। डायरेक्ट सातवें पटल की बात करो, प्रतिपटल तीन सप्तमांश बढ़े तो तीन सप्तमांश गुणा सात तीन आया और वो सात में मिला ना बेसिक में, तो दस सागर आ गए। समझ में आई बात, ये बहुत आसान तरीका है। अब पांचवी पृथ्वी में पांच इंद्रक है, तम, भ्रम, झष, अंध और तिमिश्र नामक पांच इंद्रक है। उनके आयु प्रमाण की संदृष्टि इस प्रकार है, वहां पांच प्रस्तर है। अब देखो चौथी की उत्कृष्ट आयु दस सागर थी और पांचवी की उत्कृष्ट है सत्रह सागर, सात का डिफरेंस है और पटल है पांच। तो उसमें सात पंचमांश होते हैं यानी एक पूर्णांक दो सप्तमांश हो जाते हैं, तो दस में मिला दो एक पूर्णांक दो सप्तमांश तो ग्यारह पूर्णांक दो सप्तमांश हो जाते, सॉरी सप्तमांश नहीं पंचमांश, पंचमांश कहना है मुझे। फिर से सुनो, सत्रह माइनस दस डिफरेंस सात आ गया, उच्छेद का प्रमाण है पांच, सात बटे पांच यानी एक पूर्णांक दो पंचमांश, वो दस में मिला दो तो पहले पटल में ग्यारह पूर्णांक दो पंचमांश, उसमें और उतना ही बढ़ाते चले जाओ तो लास्ट पांचवे पटल में कैसे होगा, सत्रह ने वृद्धि का प्रमाण सात पंचमांश था इनटू पांच तो सात आ गए और हमारा बेसिक था दस, दस में सात मिलाए तो सत्रह सागर आ गए। छठवी पृथ्वी में तीन ही इंद्रक है, देखो हिम, वर्दल और लल्लंक नामक तीन इंद्रक है। उनके आयु प्रमाण की संदृष्टि यह है, वहां तीन प्रस्तर है। अब सत्रह से कितने हो गए, बाईस हो गए, पांच की वृद्धि हुई और पांच बटे तीन हो जाएंगे, प्रतिपटल वृद्धि पांच बटे तीन। तो पांच तृतीयांश यानी एक पूर्णांक दो तृतीयांश हो जाते हैं। तो 17 में एक पूर्णांक दो तृतीयांश मिला है तो 18 पूर्णांक दो तृतीयांश हो जाते हैं। उसमें और एक पूर्णांक दो तृतीयांश और मिला दो तो 20 पूर्णांक एक तृतीयांश और ये 22 हो जाते हैं। यानी हमने देखा ना, पांच तृतीयांश मल्टीप्लाइड बाय तीन, पांच की वृद्धि हुई टोटल, तो 17 अधिक 5 22 हो जाते हैं। अब सातवीं पृथ्वी में एक ही लेयर है, सातवीं पृथ्वी में अवधिस्थान नामक एक ही इंद्रक है, देखो ये भी कितना है, उसका विस्तार कितना है मालूम है अश्विन भाई? 45 लाख योजन, वो सीमंत बिल पहला, पहले नरक का पहला, ये 1 लाख वाला है जम्बूद्वीप समान, जैसे सर्वा सिद्धि विमान ऊपर का लास्ट वाला 1 लाख योजन वाला है, वैसे ये भी 1 लाख योजन वाला है। वहां जघन्य आयु एक समय अधिक 22 सागरोपम तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम है। उसमें कोई पटल वगैरह नहीं होते, एक ही लेयर है, क्योंकि एक ही लेवल पर पांच ही है वहां पर बिल टोटल।
तो
सारे डिफरेंसेस वहां पर आयु के डिफरेंसेस होगी, कोई 22 सागर प्लस एक समय है, कोई हो सकता है 25 सागर वाले हो, कोई 30 सागर वाले हो, कोई 33 सागर वाले हो। देखो पांच ही बिल है, फिर वहां नारकी कितने तो असंख्यात है, मैंने कितने बड़े बिल हो गए। क्राउड कहेगा। अब 10वां सूत्र, ये तो नारकियों की बात हो गई अपनी, कालानुगम चल रहा है, एक जीव की अपेक्षा काल की बात चल रही है यहाँ पर मार्गणाओं में। अब तिरिक्ख गदिये तिरिक्खो केवचिरम कालादो हो दी, यानी कोई एक जीव की अपेक्षा है ना, वो तिरंच गति में गया, अन्य गति से वो तिरंच हुआ, तो अभी तिरंच 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 मरकर तिरंच ही रहे तो कितने काल तक रह सकता है, ये यहाँ का प्रश्न है। भले भले त्रस में आवे, स्थावर में चला जावे, पर तिरंच का तिरंच ही रहा। तो कहते यह सूत्र सुगम है, जघन्य न खुद्दा भव गणम, ये दोनों ओर से बताते ना, जघन्य में कौन सा वो क्षुद्र भव वाला लब्धि अपर्याप्त का, और उत्कृष्ट लगातार उसमें रहने का काल बताएंगे, क्योंकि क्षुद्र भवन बताया ना, तिर्यंच गति में तिर्यंच जीव वहां जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक रहता है, क्योंकि मनुष्य गति से आकर, मेरा ये प्रश्न है तेजल, मनुष्य गति से आकर क्यों लिखा? बहुत अच्छा, अंधे और नारके नहीं जा सकते, तो तिर्यंच में से तो तिर्यंच में जा सकता है ना, तो क्यों नहीं लिया? रहना बे, अरे तिर्यंच में रहने का जगन्य काल देख रहे हैं वो तीर। कॉमन सेंस है हमारे, तिरंज में से तिरंज नहीं जाता वो कहाँ बात है, वो तो उसके और मध्यम हो जाएगी, अन्य गति से आया तभी तो हम तिरंज गति का काल गिनेंगे, वो पहले मनुष्य गति में था और क्षुद्र भव में डालना है, इसलिए मनुष्य गति से ही डालना पड़ेगा उसको, अन्य दो गति से जा नहीं सकता। इन्हें आपका अर्धा वही लिया ना, एक ही भव लिया जघन्य, वो जो उत्कृष्ट स्थिति यानी तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट काल अनंत, वो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। वो कहा अगर हमको ये कायोग लेना है, औदारिक कायोग लेना है तो लेते उसमें, हाँ। अभी वो काय मार्गणा में वो बात आएगी शायद, वो भी लगातार अनेक जघन्य में कितने, उसमें भी जघन्य छोटी अंतर्मूर्त ले लेंगे। देखो क्या पढ़ते अभी यहाँ पर, तो मनुष्य गति से आकर क्यों डाला ये शब्द ख्याल में आई ना बात, तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न होकर वहां जघन्य आयु स्थिति प्रमाण काल तक रहकर, मिनिमम आयु वाला है उसको क्षुद्र भव कहते हैं, वहां से निकलने वाले जीव के, अभी वहां से निकलकर कौन से गति में जाएगा मनीषा बेन आप बताओ, वो लब्धि अपर्याप्त जीव अगर उसको तिरंज में भेज सकते हम, परंतु वो तो तिरंज गति का काल बढ़ जाएगा, हमको तिरंज गति का मिनिमम काल चाहिए, उसको अन्य गति में भेजना पड़ेगा। तो लब्धि अपर्याप्त तिरंज मरकर कौन से गति में जाएगा? देवगति में नहीं जा सकता। अपर्याप्त जीव देवगति की आयु नहीं बांधते, ना नरक गति की बांधते, अभी उसको मनुष्य गति में ही जाना पड़ेगा। तो वहां से निकलने वाले जीव के, वो मनुष्य में जाने वाले है, क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण जघन्य काल पाया जाता है। उस जो काल है उसका नाम ही क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र भव ग्रहण। क्षुद्र भवन यानी लब्धि अपर्याप्त की मिनिमम आयु। लब्धि अपर्याप्तों में भी आयु के जघन्य से उत्कृष्ट तक भेद होते हैं। है तो वो अंतर्मूर्त ही, परंतु उसमें हमने देखा था, ये आगे कैसी हम इसमें आएगी, तो जो बंधती है मिनिमम आयु ना, वो तो उतनी तो जीव भोगता है, परंतु कुछ मध्यम परिणाम वाली आयु बांधी हो तो उन जीवों में भी कदलीघात होकर वो बंधी हुई जघन्य आयु से भी और कम हो जाती है, उसको कहेंगे क्षुद्र भव। ये सर्वत्र नहीं कहते लब्धि अपर्याप्त नहीं क्षुद्र भव, ऐसा ही गिनते हैं। ये इतनी डिटेल चर्चा सब जगह नहीं करते। अब दूसरा आगे वाला सूत्र 12 नंबर का, ये नीचे सूत्र का नंबर दिया नहीं है ना, हाँ ऊपर पढ़ेंगे। उक्कसेन अनंत कालम असंख्येज पोगल परियट्टम, वो चर ज हुआ डबल ज करना, तिर्यंच जीव उत्कृष्ट से अनंत काल तक रहता है, क्योंकि तिर्यंच गति में चल रही ना बात अपनी, तिर्यंच मरकर तिर्यंच, तिर्यंच मरकर तिर्यंच ही रहे। तो जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि अविवक्षित गति हमारी विवक्षित है ना, हम किसी बात पूछ रहे तिर्यंच की, तो अविवक्षित गति से यहाँ आना चाहिए। अविवक्षित गतियों से आकर तिर्यंचों में उत्पन्न होकर, अभी यहाँ कौन सी गति लेना, देवनारकी के मनुष्य कौन सी ले सकते हैं? कोई भी ले सकते, कोई भी ले सकते, क्योंकि यहाँ एकेंद्रियों में डायरेक्ट नहीं बनना। अभी पंचेंद्रिय भी हुआ तो क्या हुआ, बाद में वो चला जाएगा एकेंद्रिय में। तिर्यंचों में आकर उत्पन्न, तिर्यंचों में उत्पन्न होकर आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन काल तक। देखो पुद्गल परिवर्तन, एक पुद्गल परिवर्तन होने के लिए अनंत काल है, तो एक पुद्गल परिवर्तन एक हमने यूनिट बनाया, ऐसे दो पुद्गल परिवर्तन, दस पूरे पुद्गल परिवर्तन, ऐसे कितने, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तो असंख्यात की वैल्यू कितनी है, आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो असंख्यात है, उतने पुद्गल परिवर्तन काल तक तिर्यंचों में परिभ्रमण करके अन्य गति में जाने वाले जीव के, फिर बाद में अन्य गति में ही जाया गया, सूत्रोक्त ने सूत्र में बताए हुए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल पाया जाता है, यानी बाद में वो अन्य गति में जाएगा। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहने पर आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही से वे पुद्गल परिवर्तन होते हैं। अब 122 पृष्ठ पर आते हैं। असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों का तात्पर्य आवली के असंख्यात वे भाग मात्र बार से ही है, वार से नहीं, बार से ही है, अधिक नहीं, यह कैसे जाना जाता है? क्योंकि असंख्यात के भी बहुत भेद है, तो आवली प्रमाण पुद्गल परिवर्तन क्यों नहीं लिए, ऐसा उसका प्रश्न है। तो कहते हैं आचार्य परंपरागत उपदेश से, क्योंकि ये तो सूत्र की बात है, परंतु ये परंपरा से आचार्यों के उपदेश चले आ रहे हैं। तिर्यंच गति कहने से उसकी मार्गणा की अपेक्षा भेद होते हैं। पहले मैंने सामान्य से तिर्यंच कहेंगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गए, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच कहेंगे तो पंचेंद्रिय तिर्यंच कहने से उसमें पर्याप्त अपर्याप्त तीन वेद वाले सब आ गए, फिर कहेंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, उसमें अपर्याप्त को छोड़ दिया, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति। तो ये तीन भेद यहाँ पूछ रहे। देखो पंचेंद्रिय तिरिक्ख, पंचेंद्रिय तिरिक्ख पज्जत, पंचिंद्र तिरिक्ष जोड़ी ने केवचिरम कालादो होती यानी अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है, पंचेंद्रिय तीरें रहना चाहिए, पंचेंद्रिय से वो द्विंद्रियादि में चला जाए एकेंद्रिय वो नहीं गिनना, पंचेंद्रिय तीरें रहना चाहिए, भले वो बीच में अपर्याप्त हो पर्याप्त हो कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर भी वो क्षुद्र भव चलेगा, पंचेंद्रियों का क्षुद्र भव तीरियांचों का। देखो नीचे अर्थ पढ़ के फिर आगे के सूत्र में जाएंगे। पंचेंद्रिय तीरियांच, पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तीरियंच योनिनी जीव वहां वहां ने अपनी अपनी पर्याय में कितने काल तक रहते हैं। ते जहन्ने न खुद्दा भवक गहनम अंतो मुहूर्तम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक ये रुके, सबके लिए ये कंडीशन नहीं है। पंचेंद्रिय पर्याप्त कहने से उसमें क्षुद्र भव नहीं लेना, सामान्य पंचेंद्रिय तीरियंचों में लेना, तीन जुदे जुदे हैं, इसलिए तीन जुदे जुदे वहां और बता रहे। तो जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक यह एप्लीकेबल है पंचेंद्रिय तीरियंचों के लिए। वो पंचेंद्रिय तीरियंच पंचेंद्रिय देखो जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक ये कुछ गड़बड़ी हो गई वहां पर, यहाँ पंचेंद्रिय तीरियंच नहीं जानना चाहिए था, नहीं नहीं पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त वो पंचेंद्रिय तीरियंच योनिनी अंतर्मूर्त काल तक रहते हैं। कहाँ पर? अरे पर पंचेंद्रिय तीरियंच अगर कहेंगे केवल उसमें होता है, आगे के में नहीं होता, तो वो क्यों पहले डाला? ये ऐसा होना चाहिए थे, जघन्य से लिखा ना, जघन्य से यहाँ पंचेंद्रिय तीरियंच लाओ, क्षुद्र भवन के पहले लिखो। देखो मैं अभी ठीक से पढ़ती हूँ, जघन्य से पंचेंद्रिय तीरियंच क्षुद्र भव ग्रहण काल तक व पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त वो पंचेंद्रिय तीरियंच योनिनी अंतर्मूर्त काल तक रहते, अभी ठीक आया ना ये? पंचेंद्रिय तीरियंच कहने से पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आए, उसी में केवल क्षुद्र भव होगा, पर जब उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त तो उसमें तो अंतर्मूर्त वाला छोटा भव होगा और पंचेंद्रिय तीरियंच योनिने में भी अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय तीरियंचों का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, कारण कि पंचेंद्रिय तीरियंचों में अपर्याप्त जीवों का होना संभव है, उसमें वो इंक्लूडेड है। शेष तीरियंचों का प्रमाण काल अंतर्मूर्त है, जघन्य काल प्रमाण काल क्यों लिखा? एक मिनट, ऊपर क्या लिखा है? शेषे संतम तथ्य अपज्यतानम असंभवादो, शेष तीरियंचों का प्रमाण नहीं लेना, जघन्य काल अंतर्मूर्त है क्योंकि उनमें अपर्याप्त नहीं होते, समझ में? तो पर्याप्तों की जघन्य आयु लेना है, वो अंतर्मूर्त होते हैं। पर्याप्त जीवों में जघन्य आयु स्थिति का प्रमाण क्षुद्र भव ग्रहण काल नहीं होता, अर्थात उससे अधिक होता है। ये जो मैक्सिमम है क्षुद्र भव की, उसमें एक समय मिला दो तो जाके पर्याप्तों की जघन्य होगी, क्योंकि यदि पर्याप्त काल के जघन्य आयु प्रमाण भी क्षुद्र भव ग्रहण काल मात्र होता तो प्रस्तुत सूत्र में अंतर्मूर्त काल के उपदेश के निरर्थक होने का प्रसंग आ जाता, यानी उसकी जघन्य आयु प्रमाण भी होती अगर तो इसको क्षुद्र भव अलग से नहीं कहते। आगे पढ़ते हैं। अब ये जगन्य की बात बताएं, अब तीनों में उत्कृष्ट बताएंगे। उक्कसेन तिन्न पलिदो वमाणी पूव कोड़ी पुदत्तेन भियाणी। देखो तीन पल्ले एक भव है, परंतु वहां जाने के पहले वो पंचेंद्रियों के अनेक भव भी कर सकता है कि नहीं, पंचेंद्रिय तीर्यंजन की बात चल रही है। तो कहते उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम प्रमाण काल तक पंचेंद्रिय तीर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त वो पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी जीव रहते हैं। अब वो समझाएंगे कैसा है वो 123 पेज पर। पंचेंद्रिय तीर्यंच का काल देखो, क्योंकि पंचेंद्रियों को छोड़ एकेंद्रिय आदि अन्य जातीय जीवों में से आकर पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त वो पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी जीवों में उत्पन्न होकर। अभी हमारी क्राइटेरिया हमारा क्या है, पंचेंद्रिय तीर्यंच, तो हो सकता है वो नारकी में से आया हो, मनुष्य में से आया हो, या एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक के जीवों में से आया हो, वो पंचेंद्रिय तीर्यंच हुआ है, बस इतना ही। अने ये विवक्षित हुआ, अविवक्षित पर्याय में से इसमें आया है पंचेंद्रिय तीर्यंच। अभी तीन की बात अलग अलग है, परंतु उसका कथन एक सर्थ कर रहे, वो क्रमशः उसकी बात बताएंगे। पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त वो पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी जीवों में उत्पन्न होकर क्रमशः 95, 47 वो 15 पूर्व कोटि प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके दान देने से अथवा दान का अनुमोदन करने से तीन पल्योपम की आयु स्थिति वाले भोगभूमिक तीर्यंचों में उत्पन्न होकर अपनी आयु स्थिति प्रमाण काल तक वहां रहकर देवों में उत्पन्न होने वाले जीव के सूत्रोक्त काल घटित होता हुआ पाया जाता है। अभी इसकी बात करेंगे। एक तो पंचेंद्रिय तीर्यंच इन जनरल लिया, उसमें कितने 95 पूर्व कोटि बताए। देखो ये कैसे, पंचेंद्रिय कहने से उसमें संगी भी आ गए और असंगी पंचेंद्रिय भी आ गए, और उसमें स्त्री वेदी भी होते हैं, पुरुष वेदी होते हैं, और नपुसक वेदी भी होते हैं। हर एक के 8-8 भव लेना। देखे संगी के 8-8 = 24 और असंगी के 24, 48 तो ये हुए। और सभी पूर्व कोटि के लेना, असंगी जीव भी पूर्व कोटि आयु वाला हो सकता है। हमें तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है, तो कोई जीव 8 बार वो संगी पंचेंद्रिय पुरुष वेदी हुआ, फिर वो स्त्री वेदी हुआ 8 बार, नपुसक वेदी 8, तो 8 + 24 तो उसके संगी के भव हुए, फिर असंगी में 24 हो गए, 48 हो गए, बीच में एक अपर्याप्त का भव किया, और फिर अभी लगातार भी करेंगे तो 8 उसके भी हो सकते हैं, परंतु उसको अंतर्मुहूर्त में सब गिन गए, फिर 48 करना है, फिर हम असंगी के और फिर संगी के लास्ट में संगी का रखना। अगर 48 और 48 होते तो 96 हो जाते। अब 96वां जो है उसके बदले हम वो तीन पल्ले वाला लेंगे, यानी जब उसके 95 पूर्व कोटि हुई तो उस भव में उसके परिणाम कैसे, वो दान के बताए ना, भोगभूमि में जीव क्यों उत्पन्न होता है, मिथ्या दृष्टि दान के परिणाम के कारण वहां उत्पन्न, या उसकी अनुमोदना भी दे। आप कहेंगे तीर्यंच कहां दान देने को जा रहा है, अनुमोदना तो कर सकता है, कोई मुनि को दान दे रहा है आहार दान, और उसकी अनुमोदना भी होती है, उसके फलस्वरूप वहां वहां जन्म लेता है, तो उसने तीन पल्ले की आयु वहां। और भोगभूमि वाला मरकर नियम से देव में ही जाता है, तो उसके कितनी पूर्व कोटियां है, 95 पूर्व कोटियां और तीन पल्ले। ये सामान्य से पंचेंद्रिय तीर्यंचों की बात हो गई। अब पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त, वो बीच वाला अपर्याप्त का भाव नहीं ले सकते, तो 48 ही भव हो सकते हैं, तो 48 में से 48वां भव है वो तीन पल्ले का लेना। तो पहले पूर्व कोटिया 47 हो जाती है, 47 पूर्व कोटिया प्लस तीन पल्ले। अब योनिमती यानी स्त्री वेदी है, वो संगी के 8 और असंगी के 8, तो हम संगी के बाद में रखेंगे क्योंकि उसको भोगभूमि में ले जाना है ना। तो स्त्री पर्याय में असंगी पंचेंद्रिय के 8 भव और संगी पंचेंद्रिय के 8 16 हो सकते थे। 16वे नंबर का जो भव है उसको हमको 3 पल्ले वाला लेना है क्योंकि मैक्सिमम स्थिति हमको पॉसिबिलिटी बतानी है। तो 15 पूर्व कोटि और 3 पल्ले, इस सबके लिए मिलकर कथन ऐसा होगा। पृथक्त्व पूर्व कोटि, पृथक्त्व का प्रमाण अपना अपना जुदा जुदा वो समझ लेना। यहाँ तो उन्होंने हरेक की बात स्पेसिफिकली बताई है, इसके आगे कहीं पर भी विषय आता है तो कहेंगे पृथक्त्व पूर्व कोटि। पृथक्त्व का अर्थ है कुछ भी, उसके गिनी चुनी जो कुछ होगी। अभिशंका, तीर्यंचों में दान देना कैसे संभव है? उसका समाधान सधामान हुआ है। पेन किधर गए मेरे? ये लास्ट टाइम ख्याल में नहीं आया। समाधान, आप में करेक्टर है क्या? भूल है, समाधान है। अच्छा, उतना तो अच्छा नहीं, क्योंकि जो तीर्यंच संयता संयत जीव पांचवे गुणस्थानवर्ती सच्चित्त भंजन के प्रत्याख्यान अर्थात त्याग व्रत को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए शल्लकी के पत्तों आदि का दान करने वाले तीर्यंचों के दान देने में कोई विरोध नहीं आता। क्या बात है, यानी तीर्यंचों में भी जो पंचम गुणस्थानवर्ती है और उन्होंने सचित्त कुछ त्याग किया है, ये शल्ल की क्या होती पता नहीं है, परंतु यानी उनके योग्य जो कुछ है उसका वो खाने के लिए उसका दान हो सकता है, ये कह रहे। शंका, स्त्री पुरुष और नपुसक वेदी पंचेंद्रिय पंचेद्वीय हुआ पंचेंद्रिय तीर्यंचों में आठ आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल तक ही जीव रहता है, यह कैसे जाना जाता है? यानी 8 से ज्यादा पूर्व कोटि क्यों नहीं जाए? तो कहते आचार्य परंपरागत उपदेश से।
गुणस्थानवर्ती तीर्यक तो दिव्य में ही जाएगा ना।
हाँ, तो
ये भोगभूमि की बात ही है ना, दान की अपेक्षा।
देखो, पांचवे गुणस्थान वर्ता भोगभूमि में आयु बांधेगा क्या? हाँ, तो आपका प्रश्न क्यों आया? दान देने वाला कौन है? मिथ्या दृष्टि है, किसको दे रहा है? पंचम गुणस्थानवर्ती तीर्यंच को। नहीं समझे? भोगभूमि की आयु कौन बांधता है? मिथ्या दृष्टि। किस फल रूप? दान के फल में। तो यहाँ पूछा गया था, वो तीर्यंच ने तीर्यंच को ही दान दिया है। अभी जो उनके हिसाब से वो तो संयमा संयमी है ना, उसने कुछ त्याग किया है तो उसके योग्य उसको आहार देना, ये क्या हुआ? दान, दान हुआ ना। अब क्या मनुष्य एक दूसरे को दे सकते कि तीर्यंच नहीं देते? नहीं देते। अरे अभी एक चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती है कि नहीं लाके? वो तो अपने बच्चों को, परंतु दूसरे को भी दे सकते हैं ना। एक जो बंदर है वो दूसरे को नहीं दे सकता कुछ? समझ में आते हैं ना? कुछ फल तोड़ कर नहीं ला सकता वो? क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है। हमने क्या सोचा है? सारी बुद्धि मानव जाति को ही मिली। आगे देखते, 16 नंबर का सूत्र, पंचेंद्रिय तिरिक्ख अपजता। देखो, 3 प्रकार के पंचेंद्रिय हो गए ना, पर्याप्त, सामान्य से पर्याप्त और योनिमति। अब स्पेसिफिकली बताते अपर्याप्तों की बात पूछ रहे। पंचेंद्रिय तिरिक्ख अपजता केवल चिरम कालादो होती, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जघन्येन क्षुद्रा भव ग्रहणम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त रहते, वो एक भव लिया उसका, क्योंकि किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर, यानी भले वो तिर्यंच पंचेंद्रिय से आया हुआ अपर्याप्त नहीं था, आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में उत्पन्न होकर, अभी यहां अपर्याप्त में आया है, देवनारकी से तो नहीं आया है, परंतु मनुष्य या तिर्यंच अन्य पर्यायों से आ सकता है। हाँ, ही क्यों ले रहे, तो क्या हुआ, एक इंद्रिय से नहीं आ सकता, पंचेंद्रिय पर्याप्त से भी आ सकता है, योनिमति से भी आ सकता है, पंचेंद्रिय के लिए बात है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में उत्पन्न होकर वह सर्व जघन्य काल से, देखो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, सर्व जघन्य काल से भुज्यमान आयु को कदली घास से नष्ट करके शुद्र भव ग्रहण काल प्रमाण काल तक रहकर निकल जाने वाले जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। ये सब जगह ये बात नहीं लिखते, मैंने बताया ना था, नहीं तो अपर्याप्त की क्षुद्र भव नहीं आयु ऐसा नहीं ले, उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक के भेद है। मैंने क्षुद्र भव में कदली घात वाली बात ली उन्होंने, तो उसको उतना काल पाया जाता है। फिर शंका, एक कदली घास समझते क्या है, भुज्यमान जो हम आयु भोग रहे हैं वो आयु हमने कब बांधी थी, पिछले भव में बांधी थी, जो बांधी वो तो नक्की है, उतनी आयु लेकर जन्म लिया है, और फिर क्या हो सकता है कि जो बंधी हुई आयु जो है उसका अनेक निषेकों का घात होकर वो नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, यानी उसकी आयु कट डाउन हो गई, जो भोग रहा है उसकी बात वो ऐसा ही उसका होना था, कदली घात जिसको हम कहते ना, अभी हम बाह्य निमित्त की बात करेंगे, उसके अंतरंग परिणाम की बात छोड़ो, निमित्तों की चर्चा करेंगे। मनुष्यों में ऐसा कदली घात क्यों हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है, किसी ने बंदूक गोली मारी, कोई हिमरेजी, कोई डिसीज हुआ, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। अब यहाँ तो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त को या वनस्पति को जो कुछ भी हो उनमें कदली घात कैसे हो सकता है, जैसे हम जो कुछ झाड़ू लगाते हैं या जो कुछ कूटते हैं, ये जो कुछ जो चीजें चलती है उसमें जो जीवों का घात होता है वो कदली घात से घात हो जाता है, वो बाह्य निमित्त की अपेक्षा कहेंगे उसमें कदली घात हुआ। यहाँ कहते हैं कदली घात से, ये शंका है, कदली घात से भुज्यमान आयु को नष्ट करने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त को में क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल क्यों नहीं पाए जाते। देखो यहाँ प्रश्न क्या बताया, वो अपर्याप्त भी तो कदली घात करते हैं, तो पर्याप्त जीवों को भी करने दो ना, उनका भी कदली घास से तो मरण होता ही हो सकता है, परंतु उनके लिए कंडीशन क्या है, वो पर्याप्ति पूरी हो जाएगी पूरी, और पर्याप्ति पूरी हो जाने के बाद और अंतर्मुट चला जाएगा, फिर आयु फिर कदली घात करके फिर आयु बांधेगा वो, तो उसका काल बड़ा है। तो यहाँ पूछे बताते उसका उत्तर, नहीं क्योंकि पर्याप्तकों में बहुत अच्छी तरह आयु का घात करने वाले जीव के भी अंतर्मूर्त प्रमाण भुज्यमान आयु का इससे कम में पतन नहीं होता। वो इससे और कम शब्द जो अलग अलग लिखो, क्या कहते हैं, जो कदली घास से जो मिनिमम आयु जिसको जीवनी आयु जिसको कहेंगे, लब्धि पर्याप्तकों में जो मिनिमम पॉसिबल जो जी रहा है, इन्हें कदली घात होकर जो मिनिमम आयु शेष बची वो कम है। पर्याप्त जीव कितना भी कदली घात करके कितना भी आयु घटावे वो इतनी छोटी नहीं हो सकती, ये कहना चाहते। तुरंत नहीं मरता है, अभी आयु बनी बांधी उसने। पहले कदली घात होता है, पहले कदली घात होता है, बाद में आयु बनती है, बाद में मिनिमम आवली का असंख्या तो भाग रुक कर फिर मरण होता है। आयु भी अंतर्मूर्त के छोटे काल में नहीं बनती है, ये सब अंतर्मूर्त का जो प्रमाण है, असंख्यात समय है। अब यहाँ पूछते हैं शंका, देव और नारकी जीवों में क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण अथवा अंतर्मूर्त प्रमाण आयु स्थिति क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि अभी अभी नारकी की बात सुन के आया है ना, तो तिरंचो में आप बता रहे हैं, नारकी में ऐसा क्यों नहीं बताया था? समाधान, नहीं, क्योंकि देव और नारकियों संबंधी आयु का बंध 10,000 वर्ष से कम नहीं होता, एक बात, ये बंधनीय आयु, और उनकी भुज्यमान आयु का कदलीघात भी नहीं होता, ये दूसरा कारण है। यानी उनकी मिनिमम बंधी हुई आयु 10,000 वर्ष और कदलीघात वहां होता ही नहीं है। उक्कस्य न अंतोमुत्तम, देखो ये किसकी बात चल रही है, पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त, यानी पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त मरकर पंचेंद्रिय लब्धि पर के उसी में रहे तो अधिक से अधिक कितने वो हो गए, संगी के 8 और असंगी के 8, 16 भो, वो भी अंतर्मूर्त में हो जाएंगे। तो उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त रहते, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त के अनेक भव लेना एक के बाद एक लगातार की बात है, क्योंकि किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न होकर और वहां सर्वोत्कृष्ट भवस्थिति प्रमाण काल तक रहकर, इसको भवस्थिति कहा, निकलने वाले जीव के भी अंतर्मूर्त से अधिक काल नहीं पाया जाता, यानी अंतर्मूर्त में उसके अनेक भव हो जाते हैं। अब मनुष्य गति की बात करेंगे, 125 नंबर के पृष्ठ पर, मनुष्य गति है, मनुषा, मनुष्य कहने से वो सामान्य से, लब्ध्य पर्याप्त भी उसमें इंक्लूड करना है, मनुष्य पज्जत्ता, मनुषिणी केवचिरम कालादो होती, मनुष्य गति में मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त व मनुष्यनी जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, ये प्रश्न चिन्ह करो। शंकाकार पूछे, जब एक जीव की अपेक्षा कालानुगम किया जा रहा है तब मनुष्य कितने काल तक रहता है, इस प्रकार एक जीव विषय की प्रश्न होना चाहिए, न कि बहुवचनात्मक जैसा कि सूत्र में पाया जाता है, वहां कितने काल तक रहते हैं पूछा है ना। समाधान, नहीं, क्योंकि एक व अनेक संख्या से उपलक्षित जीव में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा अनेकपना होने में कोई विरोध नहीं उत्पन्न होता है, यानी अनेक के लिए भी वो, हाँ वही वो शब्द आता है एक या अनेक। शंका, सर्वत्र पृच्छा पूर्वक ही अर्थ का निर्देश क्यों किया जा रहा है, ये समझ में है प्रश्न, ये हर बार एक सूत्र में प्रश्न फिर दूसरे सूत्र में अर्थ बता रहे हो उसका समाधान, तो डायरेक्ट बताओ ना, प्रश्न पूछने की क्या जरूरत थी। क्यों नहीं, क्योंकि वचन प्रवृत्ति का फल पर के लिए प्रतिपादन करना है, क्योंकि कोई पूछता है उसके मन में संशय है, शंका है, तो उसको वो उसका फल मिलता है दूसरे को। पहले भी बात आई थी ऐसे, वो द्रव्य प्रमाण अनुगम कितने हैं तो अनंत है वगैरह वगैरह, तो वहां भी पूछा था, तो वहां कहते कि तो ये स्वकर्तृत्व का निषेध है, ये भगवान से चली आ गई बात है, ये बताना था, ऐसा वहां उत्तर दिया था, आपको याद होगा तो। यानी किसी ने अपने मन से नहीं रचना की है, पूर्व सूत्र से चली आ गई है। अब ये तो प्रश्न हुआ, अब उसका उत्तर बता रहे हैं। तीन जुदे जुदे ने सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य है। जघन्य से ऊपर पढ़ना रह गया। जघन्य न खुद्दा भव गहनम अंतमोत्तम, दो ऑप्शन बताए। सामान्य मनुष्यों में क्षुद्र भव कहेंगे, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीव मनुष्य, और अंतर्मूर्त काल तक मनुष्य पर्याप्त वो मनुष्य नहीं रहते हैं। यहाँ बराबर आएगी बात। सामान्य मनुष्यों की जघन्य आयु स्थिति का प्रमाण क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण होता है। एक क्षुद्र भ्रवण का अर्थ उन्होंने पहले बताया था, वो तो लब्धि पर्याप्त की आयु बांधी और वो उसमें भी कदलीघात हुआ, क्योंकि सामान्य मनुष्यों में अपर्याप्त जीवों का होना संभव है। किंतु पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियों में मनुष्य नहीं समझते है, स्त्री वेद वाला भाव से स्त्री, वो द्रव्य से पुरुष भी हो सकता है, उसको भी मनुष्य नहीं कहेंगे। जघन्य आयु का आयु स्थिति का प्रमाण अंतर्मूर्त है। देखो इसको आयु स्थिति कहा और लगातार अनेक भव कहते उसको भवस्थिति कहते हैं। अभी ये शब्द आया था 124 पर नीचे से दूसरी लाइन में सर्वोत्कृष्ट भवस्थिति लिखा था, यानी अनेक भव लेना उसमें, और यहाँ आयु स्थिति ने एक भव की बात है। तो पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यों में उसकी जघन्य आयु अंतर्मूर्त तक की रहेगी, क्योंकि उनमें यानी अपर्याप्तकों के अभाव से आयु स्थिति के विकल्प अंतर्मूर्त से कम के नहीं पाए जाते। अपर्याप्तों की भी उसको अंतर्मूर्त ही कहेंगे, फिर भी उसको एक स्पेसिफिक नाम है क्षुद्र भव ग्रहण। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब ये तो जघन्य की बात हुई, अब उत्कृष्ट की बात करेंगे। उक्कस्येन तिन्नि पलिदो वमाणि पूर्वकोडि पुदत्तेन भैयाणि, उत्कृष्ट से पूर्वकोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम काल तक जीव मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त वो मनुष्य नहीं रहते हैं। है चाहिए वहां है शब्द डालो, जैसे तीरियंचों में देखे थे, तीरियंचों में संगी असंगी थे, यहाँ संगी असंगी का कोई भी सारे संगी ही है। तो यहाँ स्त्री के आठ, पुरुष के आठ, नपुंसक के आठ बहु करना है, आठ त्रिक 24 हो गए, फिर बीच में एक करना अपर्याप्त का, और फिर करना आठ आठ आठ, तो कितने 24 और 24 48 हो सकते, तो अंतिम ले जाना उसको तीन पल्ले वाला, तो कैसा होगा 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, वो सामान्य मनुष्यों के लिए। जहाँ अपर्याप्तों का नहीं ले सकते, पर्याप्तों का लेना है, तो वहाँ आठ 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 24 लेंगे, हाँ 23 प्लस तीन पल्ले। और जहाँ मनुष्य नहीं लेनी, केवल आठ ही लेना है, तो सात और तीन पल्ले, समझ। ये एक जीव के लगातार भवों की बात है। फिर से उक्कस्येन तिन्नि पलिदो वमाणि पूर्वकोटि पुदत्तेन भैयाणि, उत्कृष्ट से पूर्वकोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम काल तक जीव मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त वो मनुष्य नहीं रहते हैं। देखो, क्योंकि किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर विवक्षित मनुष्यों में उत्पन्न होकर क्रमशः 47, 23 व 7 पूर्वकोटि काल परिभ्रमण करके दान देकर अथवा दान का अनुमोदन करके, देखो ये बात ख्याल में रखो ये लगातार जो मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य हो रहा है वो तो मिथ्या दृष्टि है। समय दृष्टि होगा तो चला जाएगा ना देव में, ख्याल में आते हैं बात। नहीं, दान देने के हिसाब से भोग भूमिका हो रहा है, हर मनुष्य से मनुष्य दान देने के हिसाब से नहीं हो रहा है। भोग भूमि की बात है, उसके लिए दान देने, दान की अनुमोदना, और वो दान भी किसको, वो मुनियों को जो होता है ना, आहार दान जो मुनियों को दिया जाता है, मुनिया ने वो दिगंबर मुनि, बाकी कोई आंखों के सामने मत रखो, क्योंकि पात्र दान होना चाहिए। केवल दान देना यही एक क्रिया मत देखो वहां पर। औषध दान या आहार दान होता है, शास्त्र दान, आहार दान, ये सब होते हैं उसमें, ज्ञान दान वगैरह। हाँ, लास्ट क्या, जरा जोर से बोलो, उसमें बोलो।
भोग भूमिका पर समय दृष्टि भी ले सकते हैं, समय दृष्टि
ले सकता है ना, ले सकता है, पर वो समय दृष्टि का ही होता है ऐसा मत कहो, क्योंकि जब आयु बांधी थी तो मिथ्या दृष्टि था, बाद में उसको सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं है। हो सकता है क्षायिक नहीं हो जाए तो सम्यक तो होकर छूट भी गया उसका, ये भी हो सकता है। ये वो सम्यक तो होता ही नहीं होता, ये अभी अपना विषय नहीं है, अभी लगातार रहने की बात है। यानी जो 48 भवों की बात आती है, एक जीव के लगातार की बात है। फिर से देख दो, दान देकर अथवा दान का अनुमोदन करके तीन पल्योपम आयु स्थिति वाले भोग भूमिज मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। यानी लगातार की बात है, यहाँ पर लगातार जो उसके 48 पूर्व कोटिया बताए, 47 पूर्व कोटिया और तीन पल्य, ये मनुष्यों में रहने का लगातार काल है, उत्कृष्ट काल। सैतालीस पूर्व कोटि प्लस तीन पल्य, और बीच में वो अपर्याप्त का भाव किया, वो गिना नहीं, उसके अंतर्मुहूर्त में उसे में इंक्लूड कर दिया उन्होंने। ये 47 तो हो गया सामान्य मनुष्यों में, 23 हो गए मनुष्य पर्याप्त में, और 7 पूर्व कोटि और तीन पल्ले हुए मनुष्यनी में। अब मनुष्य अपर्याप्तता केवल चिरम कालादो होती, अपर्याप्त मनुष्य वहां कितने काल तक रहते हैं, शंका। सूत्र में बहुवचनात्मक निर्देश कैसे उपयुक्त ठहरता है, एक जीव की अपेक्षा बात हो रही है तो यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, समाधान नहीं, क्योंकि पहले कहे हुए तथ्य के अनुसार एक में बहुवचन के निर्देश में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। एक के अर्थ में बहुवचन, क्योंकि मनुष्य ही वहां उत्पन्न हो रहे हैं, एट ए टाइम तो एक ही हो रहा है ना, उसी की बात करेंगे। अथवा यहाँ केवल एक ही जीव की अपेक्षा का अधिकार नहीं है, किंतु एक वाक्य उल्टा पुल्टा हुए, किंतु प्रत्येक रूप से सभी जीवों का अपेक्षा अधिकार नहीं है, ऐसा लिखा ना, वो पूरा निकाल दो। किंतु प्रत्येक रूप से सभी जीवों की अपेक्षा अधिकार है, ऊपर नहीं है ऐसा हुआ ना, कधिकार नहीं है ऐसा हुआ था, ये इतना निकाल दो। नीचे से तीसरी लाइन में, किंतु प्रत्येक रूप से सभी जीवों की अपेक्षा वो कधिकार नहीं ऐसा लिखा है, वो वाक्य निकालो। और अभी ठीक वाक्य ऐसा पढ़ो, किंतु प्रत्येक रूप से, यानी एक एक तरीके से सभी जीवों की अपेक्षा अधिकार है, यानी उन मनुष्यों में से प्रत्येक मनुष्य ये पर्याय पा सकता है इस तरह से, ऐसा समझकर बहुवचन निर्देश उपयुक्त सिद्ध हो ही जाता है। अब वो उसका उत्तर दे रहे, जघन्य न खुदा भव ग्रहण, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव अपर्याप्त मनुष्य रहते हैं। क्योंकि किन्हीं भी अन्य पर्यायों से आकर, अब मनुष्य अपर्याप्त तो होना तो कौन सी पर्यायों में से आएगा, तिर्यंच में से आएगा या अपर्याप्त में, मनुष्य पर्याप्त में से भी आएगा पर देवनारकी से नहीं आएगा। अपर्याप्त मनुष्यों में उत्पन्न होकर कदली घात से, यहाँ लिखा है ना, गुज्जमान आयु के घात द्वारा शुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रहकर वो वहां से निकलकर किसी भी अन्य पर्याय में उत्पन्न होने वाले जीव के सूत्रोक्त काल की प्राप्ति होती है। ये कदली घात से लब्धि अपर्याप्त में कदली घात होकर इतनी आयु शेष रहती है, यहाँ पर भी आ गई बात 126 में। अब उत्कृष्ट से उपकस्य न अंतोमोत्तम, यानी लब्धि अपर्याप्त मरकर फिर उसी पर्याय में उसी पर्याय में उसी पर्याय में उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक अपर्याप्त मनुष्य रहते हैं, क्योंकि अनेक बहुवार अपर्याप्त मनुष्यों में अति दीर्घायु होकर भी उत्पन्न हुए जीव के दो घड़ी प्रमाण काल तक बहुस्थिति का होना असंभव है। क्या कहना चाहते हैं, यानी पूरे दो अनेक बार भी वो अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ और ये अपर्याप्त संबंधी मैक्सिमम आयु भी उसने भोगी, तो भी इतना पूरे 24 मिनट वाला वो जो है मुहूर्त प्रमाण वो नहीं होता है, तो अंतर मुहूर्त ही होता है। ऐसे लगातार उसके 8 ही भव हो सकते हैं। अब देवों की बात पूछेंगे, देवगदी ये देवा के वचिरम काला दो होती। देखो देवों की जो आयु की स्थिति वही उनकी भव की स्थिति है, नारकी में भी ऐसा ही है, तिर्यंच और मनुष्यों में ऐसा है कि वो मरकर फिर उसी पर्याय में जन्म ले सकते हैं। देवगति में देव वहां कितने काल तक रहते हैं, प्रश्न चिन्ह करो। यह सूत्र सुगम है, जघन्येन दशवास सहस्राणि, जघन्य से 10,000 वर्ष तक जीव देव रहते हैं, क्योंकि तिर्यंच या मनुष्यों में से आकर, क्योंकि देव में आना है ना तो अविवक्षित पर्याय में से आकर जघन्य आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर वहां से निकले हुए जीव के सूत्रोक्त काल ही देव पर्याय में पाया जाता है। उक्कस्येन 33 सागरोपमाने, उत्कृष्ट से उक्रु हुए, उत्कृष्ट से तरे गया, 33 सागरोपम काल तक जीव देव रहते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों में आयु को बांध कर क्रमशः वहां उत्पन्न होकर वह 33 सागरोपम काल तक वहां रहकर निकले हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। तो यहाँ 10,000 वर्ष में तो मनुष्य और तिर्यंच से आए थे, तो 33 सागर में कहाँ से आएंगे, नरक से में आ सकते हैं। हाँ, मुनि को ही होता है ना वो 33 सागर की आयु कौन बांधेंगे, मुनि बांधेंगे। ये अनुदिश अनुत्तर वगैरह में उत्पन्न होने मुनिराज ही होते हैं, भावलिंगी होते हैं। शंका, दीर्घायु स्थिति वाले देवों में 7-8 भवों तक उत्पन्न कराने पर और भी अधिक काल देवगति में पाया जा सकता है, या क्या कहते हैं, जैसे वो नीचे के स्वर्ग के देव है ना, पुण्य तो कर रहे हैं सब, अब वो ऊपर के देव में चले जावे, वहां से और ऊपर के चले जावे, तो 7-8 भव देवों के करने दो ना, मनुष्यों में इतने भव किए 48-48, तो देवों को करने दो, ये इनका प्रश्न है। नहीं वो देवगति बांधते ही नहीं ना, नर गति बांधते हैं नहीं, क्योंकि देव नारकी भोग भूमिज तिर्यंच और भोग भूमिज मनुष्य इनके मरने पर पुनः उसी पर्याय में अनंतर उत्पत्ति नहीं पाई जाती। भोग भूमि का ही जीव मरकर वहीं पर नहीं उत्पन्न हो रहा, और वे भी आपस में किन्हीं कोई किसी में नहीं जाता, देव भी मोगू में भी नहीं जाता, देव नारकी में भी नहीं जाता, नारकी देव में नहीं जाता, नारकी नारकी में नहीं जाता, नारकी भूभूमि में नहीं जाता, ये सब आपस में भी नहीं जाते। कारण कि उनके वहां पुनः उत्पन्न होने का अत्यंत अभाव है। उस जाति के वो पर्याय प्रकृतियां बांधते ही नहीं, वैसे उनके परिणाम भी नहीं। अब देवों के जो अलग अलग भेद है उसकी चर्चा करेंगे। भवनवासीय वाणवेंतर ज्योतिषीय देवा के वचिरम कालादो होती। भवनवासी वाणवेंतर व ज्योतिषी देव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्ने न दसवास सहस्राणी, दसवास सहस्राणी पलिदोमस अठम भागो। देखो ये ज्योतिषी के देवों के लिए अलग से बताया। जघन्य से 10,000 वर्ष तक है भवनवासी के लिए, 10,000 वर्ष तक व्यंतरों के लिए, तथा पल्योपम के अष्टम भाग काल तक जीव क्रमशः भवनवासी वान व्यंतर व ज्योतिषी देव रहते हैं। भवनवासी और वान व्यंतर देवों की जघन्य आयु स्थिति 10,000 वर्ष है। देखो आयु स्थिति शब्द आया ना यहाँ पर। तथा ज्योतिषी देवों में जघन्य आयु स्थिति पल्लोपम के अष्टम भाग प्रमाण है, यानी पल्ल का आठवां भाग। हमने देखा था असंगी मरकर भवनवासी और ज्योतिष में जा सकता है, परंतु भवनवासी व्यंतर में जा सकता है, ज्योतिष में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो मैक्सिमम आयु भी पल्ले का असंख्यातवा भाग बांधेगा, और ये कितना? तो पल्ले का आठवां भाग बहुत ज्यादा है। शंका, जघन्य आयु स्थिति इसके विपर्यास रूप से अर्थात भवनवासी और व्यानवंतर देवों में पल्लोपम के अष्टम भाग और ज्योतिषी देवों में 10,000 वर्ष की क्यों नहीं हो सकती? समाधान, नहीं, क्योंकि उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट पदों के समान होने पर यथासंख्य न्याय को छोड़कर अन्य प्रकार का होना असंभव है। यानी जिस क्रम से उसकी बात बताइए उसी क्रम से उनकी आयु भी है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब उत्कृष्ट की बताएंगे। उक्कसेन सागरोवमम सादिरेयम, भवनवासियों के पलिदोवमम सादिरेयम और पलिदोवमम सादिरेयम। उत्कृष्ट से क्रमशः सातिरेक एक सागरोपम, सातिरेक एक पल्योपम व सातिरेक एक पल्योपम काल तक जीव भवनवासी वानवंतर व ज्योतिषी देव रहते हैं। यानी भवनवासी की ज्यादा है, सागर जितनी है, सादिक एक सागर। भवनवासी देवों में उत्कृष्ट आयु स्थिति का प्रमाण अर्ध सागरोपम अधिक एक सागरोपम होता है। तथा वानवेंतर और ज्योतिषी देवों में अर्ध पल्ल्योपम अधिक एक पल्ल्योपम होता है। कदली घातायुष्क उनमें होगा, उसकी आयु बांधकर उसका घात हो सकता है, परंतु ये जो आधा सागर ज्यादा बताया है वो ऊपर के देवों की वैमानिक की आयु बांधकर घातायुष्क होकर ही इनकी हो गई है। सब में होता है, सहस्रार तक होता है। वो सादिक 18 सागर बताई थी सहस्रार की, उसके ऊपर घातायुष्क नहीं होते। यानी ऊपर के देव की आयु बांधकर वो नीचे की घातायुष्क हो सकती है, पर घातायुष्क होकर ऊपर की रह जावे अनुदिश की, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रेवे की ऐसा नहीं होता। भवनवासी सारे मिथ्या दृष्टि है, घातायुष्क समय दृष्टि भी हो सकते है। अभी ऐसे ना कोई मुनिराज है, ऊपर के देवों की आयु बांध दी और उन्होंने घातायुष्क कर दिया, 33 सागर का घात करके 10,000 वर्ष की रह सकती है।
तो दोनों कर सकते
हैं। हाँ, परंतु समय दृष्टि घात करेंगे तो नीचे के देवों की आयु से आधा सागर ज्यादा हो जाते, और मिथ्या दृष्टि घात करेंगे तो पल्ले का असंख्यात भाग ज्यादा रह जाता है। यानी वो नीचे के मैक्सिमम आयु से इतना ही उनमें ज्यादा हो सकता है, ऐसे कुछ नियम है उसके। इस प्रकार उत्कृष्ट आयु के प्रमाण के कथन का आयु बंध संबंधी, देखो आयु बंध की बात चल रही है, क्या कह रहे हैं यहाँ, प्रश्न क्या पूछा था वहां कितने काल तक रहते हैं, और अब कहते हैं वहां की आयु उत्कृष्ट आयु कितनी बन सकती है, तो उसके सूत्र में कहे गए प्रमाण से विरोध उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ऊपर की आयु को अप शब्द रही अप अद्वर्तना ने अपवर्तनाघात से, द्व के बदले प चाहिए, अपवर्तनाघात से घात करके, अपवर्तनाघात यानी घातायुष्क किया, कदली घात तो वहां होती नहीं है। पूर्व भव में जब देव की आयु बांधी थी किसी ने, वो बांध रहे कोई मनुष्य देव की आयु बांध रहा था, तो बांध रहा था ने उसकी वो बध्यमान आयु थी, तो उसी मनुष्य पर्याय में उसने वो परिणाम के वश वो आयु कट डाउन हो गई, तो उसको कहेंगे ये अपवर्तनाघात। घात करके यानी बाद में वो भवनवासी में आया है, पहले ही घात करके वैमानिक की आयु बांधी थी और घात करके वो भवनवासी की रह गई, पर अगर भवनवासी की डायरेक्ट बांधता तो एक सागर से ज्यादा नहीं बांधता, ये बात है। घात करके उत्पन्न हुए भवनवासी आदि देवों में आयुओं का प्रमाण इसी प्रकार पाया जाता है। इन सब आयु में जो किंचित हीन प्रमाण होता है उसका कथन जानकर कहना चाहिए। देखो जीवोत्थान कालानुगम, ये चौथी पुस्तक में हमने देखा थे कालानुगम, उसमें आया था सूत्र 96 टीका भाग 4 पृष्ठ 382। हमने देखा वो साधिक साधिक जो सौधर्म की साधिक बताते हैं, साधिक दो सागर, यानी दो सागर में आधा सागर अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज्यादा होता है, ऊपर के देवों के बांधकर उसने घात करके इतने रख दी, ये उसका अर्थ होता है। अरे हो, बहुत अच्छा याद दिलाया, घड़ी पीछे चल रही थी याद नहीं थी, यही रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं वही